श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदातिकं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पिछले बार हमने मंत्र 9 तक स्टडी किया था। मंत्र 9 और मंत्र 10 में जो कनेक्शन है वो इस तरह से है कि मंत्र 9 जो अज्ञानता है उसका विकास, उसका कल्टीवेशन करने का जो परिणाम प्राप्त होता है उसका वर्णन करता है, और मंत्र 10 जो है वो विद्या अर्थात जो वास्तविक ज्ञान है भगवान के विषय में, विषावाश्य ज्ञान है या पूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान को समझने के बाद जो परिणाम प्राप्त होता है उसका चर्चा करते हैं। तो ये कनेक्शन है। अब पहले 9 में था विद्या, उसका परिणाम, और 10 में है विद्या प्राप्त करने का परिणाम। तो 10वां श्लोक पढ़िए, अनुवाद।
मनुष्यों ने बताया है कि ज्ञान के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह अज्ञान के सेवन से प्राप्त फल से भिन्न होता है।
यस, ये अंतर होता है दोनों में, क्योंकि अज्ञान और ज्ञान अंधकार और प्रकाश की तरह अलग अलग होते हैं। दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है। यहाँ पर सुश्रुमा शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुश्रुमा शब्द का अर्थ होता है कि यह ज्ञान जो है वो सुनने के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, इसको सुना जाता है, श्रवण आदि श्रवताम सुश्रुसः। ये श्रुति भगवान के जो ज्ञान है वो श्रुति, सुनने से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण, सुश्रुम मैंने सुना है। तो ये सुनने से अथॉरिटी से ज्ञान जो प्राप्त होता है उसको सुनकर सिखा जाता है। इट इज experience, you know, in the Vedic success, and it is never said that this knowledge is experience. There is a secret of Vedic knowledge. Yes, for example, आज लोग प्रत्यक्ष प्रमाण मांगते हैं। लोग जिस चंद्र पर गए तो वो लोग प्रयास करना चाहते हैं कि चंद्र का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, एक्सपेरिमेंट करके ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन शास्त्र के आधार से श्रवण करने से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे पीपल आर आस्किंग व्हाट इज गॉड, सर्चिंग सोचते रहते हैं, लेकिन वो क्या, उनका कंक्लूजन क्या आता है, ओ भाई भगवान तो कोई है ही नहीं, एक भगवान है जो मुझे मिल गया, कौन है वो, मैं खुद ही भगवान हूं। जैसे हिरण्यकशिपु विष्णु को ढूंढते वैकुंठ लोक में चले गए थे, उनको देखना है कहाँ है भगवान। So that is a demonic. No. That is not possible. It is susruma. वैदिक ज्ञान जो होता है वो सुन के प्राप्त किया जाता है। आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। ये सुश्रुमा कहां से प्राप्त होगा, कोई दुकानदार के पास मिलेगा नहीं। धीराणाम सुश्रुमा, धीराणाम सुश्रुमा धीराणाम। और धीराणाम शब्द का और अर्थ क्या होता है, जो कि सोबर प्रकार के, जो धीर प्रकृति के, जो धीर लोग होते हैं वो फैनेटिक लोग नहीं, लेकिन जो धीर होते हैं उनसे, जो स्वामी या गोस्वामी, जो भौतिक प्रभाव से मुक्त होते हैं, इस प्रकार के लोगों को धीर माना जाता है, और उनके माध्यम से इसको सुना जा सके। दैट इज सुश्रुमा। सो इसका जो मेन थीम है इस श्लोक का, उसमें ऐसा हमें समझना चाहिए कि जो वास्तविक ज्ञान है वो धीर लोगों से सुनने के माध्यम से अध्यात्म विधि का अनुसरण करके उसको सीखना चाहिए, उसको आत्मसात करना चाहिए, वही वास्तविक ज्ञान होता है, सुनकर प्राप्त किया जाता है शब्द प्रमाण। और इसके अतिरिक्त जो भी ज्ञान या साक्षात्कार माना जाता है उसको अज्ञान कहा जाता है। सो बहुत सुंदर तात्विक लिखे हैं इस श्लोक में। ज्ञान का जो संस्कृति और अज्ञान की संस्कृति, उसके विषय में बल दिया गया है, धीर से सुनने का बल दिया गया है। जैसे प्रभुपाद एक लेक्चर में बताए थे, कल्चर ऑफ नॉलेज मीन्स स्पिरिचुअल नॉलेज, कल्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संस्कृति का अर्थ होता है आध्यात्मिक ज्ञान। और भगवद गीता में 13वें अध्याय में 5 श्लोकों का उपयोग हुआ है, जिसके अंत में भगवान कहते हैं एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतन्यथा। ये जो कुछ अर्जुन मैंने तुम्हें बताया ये सब ज्ञान है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है। ऐसा भगवान ने स्पष्ट रूप से बताया। और उसी तरह से भक्तिवान ठाकुर ने कहा है, जड़ विद्या जो तुम आया वैभव, जिसकी हमने पिछली बार चर्चा की, जिसमें प्रभुपाद जी इस ग्रंथ में लिखते हैं कि ज्ञान, भौतिक ज्ञान के जितने भी स्वरूप है, ये वास्तव में भगवान की माया शक्ति के बाह्य आविष्कार है, और उनको सीखने से, उनको ग्रहण करने से मनुष्य अधिक से अधिक, अगर कोई अधिक से अधिक उसकी जो उपलब्धि अचीवमेंट है वो है कि वो एक अच्छा गधा बन सकता है। That is his maximum he can do this much। So, भगवद गीता में ये इसका पूरा वर्णन आता है कि 13वें अध्याय में अगर आप देखोगे तो ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है उसके विषय में प्रभुपाद एक लेक्चर बताया, one who has accepted this combination of bile, mucus and air, this व्यक्ति ने what is that? जो 3 धातु से बना हुआ जो शरीर है कॉम्बिनेशन, उसको स्वीकार करता है आत्मा के रूप में, उसको क्या कहा गया है, यस्यात्म बुद्धि कुणपेत्र धातु के सैव। अरे भाई आप सब विद्वान लोगों कुछ तो बोलिए।
गो खरा
का अर्थ है कि गाय गधा। ऐसा व्यक्ति गधे जैसा है जो ये मानता है कि 3 धातु से बना हुआ शरीर मैं हूं। इवन तो आप प्रयास करोगे इसको बचाने के लिए, इस शरीर को बचाने के लिए, लेकिन काल आपको छोड़ेगा नहीं, वो अपने अपना काम करता है, हम मर जाते हैं। और भगवदगीता क्या कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। 9वें श्लोक में 13वें अध्याय में इसका पूरा वर्णन आता है। सो अज्ञानता और ज्ञान, ये दोनों के अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं, विद्या को ग्रहण करना और अविद्या को ग्रहण करना। विद्या को ग्रहण करने का परिणाम ऐसा आता है कि हम 18 आइटम जो भगवद गीता में बताए हैं उसको हम ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। 2 चीज इसके अंदर आती है, 18 आइटम जो कि ज्ञान है, और उसको धीर पुरुष के सुनकर के प्राप्त किया जाता है। ये धीर पुरुष कैसा होता है, ऐसे तो भगवद गीता में बताया है कि धीरस किसको बोलते हैं,
देही नमस्मि जैसा दे प्रभु।
यस,
वो श्लोक
क्या अर्थ है इसका,
मतलब जो व्यक्ति शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होता।
यस, तो ऐसा व्यक्ति को धीर बोला गया है। लेकिन धीर को अगर और डिटेल में देखा जाए तो जो भौतिक मोहग्रस्त अवस्था से मुक्त है, जो आध्यात्मिक रूप से आत्मसात आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, जिसको न सोचती न कांक्षती, जिसको शोक और मोह ने इच्छा नहीं होती, और जो मनुष्य शरीर का सदुपयोग करने, जो ब्राह्मण और कृपण, तो जो कृपण नहीं है, जो ब्राह्मण है, और जो ऑथोराइज परंपरा से जुड़ा हुआ ऑथोराइज सोर्स से श्रवण करता है और शास्त्र के सभी नीति नियमों का चुस्त पालन करता है, ऐसा व्यक्ति को धीर माना जाता है। ऐसे व्यक्ति से श्रवण करने से ज्ञान की उपलब्धि होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। और 18 आइटम जो भगवद गीता में हमने पढ़ा उसका आपके आपको यू नो दैट, देखो इसका कॉन्ट्रास्ट अगर आप चेक करना चाहते हो तो अविद्या ने क्या किया संसार में, अविद्या जिसमें केवल अज्ञानता को बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के माध्यम से सिखाया गया ना? जैसे बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बनाना वगैरह वगैरह, लेकिन वो ऑपोजिट किस तरह से ऑपोजिट माना जाता है कि जो शांति अर्थात सहनशीलता और आर्जवम जो सिंप्लिसिटी है सरलता, उसके ऑपोजिट माना जाता है इसको। आई मीन दिस इज वी आर सीइंग द कॉन्ट्रास्ट, ऐसा कॉन्ट्रास्ट है ये। और यूनिवर्सिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते और शास्त्र में किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं है, तो कौन बता सकता है? 18वां आप खोल सकते हो, 13वें चैप्टर का जो 5 श्लोक है, तो कौन से है कि जिसको आप कर सकते हो सामने। सो एनीवे दैट कैन बी एक्सरसाइज, यू कैन टेक इट टाइम, लेकिन वी कैन सी आत्मविनिग्रह, इंद्रिय तृप्ति को बचाना, आई मीन इंद्रिय तृप्ति से दूर रहना, स्थैर्यम स्थिर रहना, और इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों से वैराग्य प्राप्त करना, ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के पास नहीं होता ये। अभी अज्ञानता के कारण वृद्ध लोगों को, जो बुजुर्ग होते हैं, जो वरिष्ठ लोग होते हैं, उनको रिस्पेक्ट नहीं देना, तो आज अब हम क्या देखते हैं कि बूढ़ों का कोई स्थान नहीं है, पर उसका ऑपोजिट क्या आप देखते हो? अमानित्वम अदम्भित्वम, अमानित्वम और अहिंसा, यस। फिर राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक कट्टरवाद, यू नो, या फिर झगड़ा, तो इसमें शांति वही सहनशीलता सरलता और अदम्भित्व, तो ये चीज नष्ट होते। तो इस तरह से आप एक एक करके अगर आप कोई भी चीज देखो, यू नो, तो ये सारे अज्ञानता के प्रमाण है। रिलीजियस प्रिंसिपल धार्मिक सिद्धांत जो है वो नाम और प्रतिष्ठा के लिए केवल सिखाए जाते हैं। फिर लोग अभिमान से चूर होते ही जा रहे, अहंकार वगैरह, तो दीज आर द ऑपोजिट ऑफ ज्ञान, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्रांति राज्यम आचार उपासनम शौचम स्थैर्य आत्मविनिग्रह इंद्रियासी सुवैराग्यम अनहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषार दर्शन असक्ति रणभिस्वंग उत्तरदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्व इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन योगेन भक्तिरव्यभिचारे विविक्त देश सेवित्वम अरतिर्जुन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शन एत ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। सो ये 5 श्लोकों में 18 आइटम है जिसे जिसको ज्ञान कहा गया है। और फिर अर्जुन ने पूछा होगा, ठीक है अज्ञान की भी ऐसा कोई पॉइंट बताइए, अज्ञान के कितने पॉइंट है? तो भगवान ने कहा कि 18 माइनस जो बचता है सारा अज्ञान है, इसको हटा करके जो कुछ भी है सब अज्ञान है। और ज्ञान प्राप्त करने से, तो ये ज्ञान तो हमने बताया, अज्ञान को अगर कोई कल्टिवेट करता है, समझो कि ये ज्ञान हमने बताया, तो वो क्या करते हैं, अज्ञानता कैसे बनती है, इसी 18 आइटमों को भंग करके। जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अभिमानी होता है, कोई व्यक्ति केवल अपने ही संतोष के लिए स्वार्थी बन के काम करता है, कोई गधे की तरह मेहनत करता है, और गधा कैसे बनता है, कोई गधा बनता है जो एक्सटर्नल फीचर्स माया के जो बाह्य आविष्कार है उसको देखता है, कैसे जैसे बड़े बड़े ऐसे अस्त्र बनाता है माया के प्रभाव से कि दुनिया को अगर कल नष्ट हो रही हो दुनिया तो आज समाप्त हो जाए पूरा विश्व। बड़े बुजुर्ग को आदर नहीं करते, किसी प्रकार का इंद्रिय संयम नहीं, शास्त्र में किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं, और 25-50% उनका खर्चा केवल डिफेंस में चला जाता है, डिफेंस इन द सेंस की आहार निद्रा भय भय के अंदर चला जाता है, और उनका परिणाम क्या आता है, एग्जाम्पल हमने क्या लिया, यूनिवर्सिटी है, साइंटिस्ट है, पॉलिटिशियंस है, जो उसके एग्जाम्पल्स है सब, और उसका परिणाम ये आता है कि उनका जन्म और मृत्यु कभी समाप्त नहीं होता। सो दिस इज व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम अज्ञान का परिणाम, और अज्ञान का परिणाम हमने बताया विद्या का परिणाम, देयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज विद्या एंड हाउ वन शुड कल्टीवेट, और इसको कल्टीवेट कैसे किया जाए, इसको कल्टीवेट करना चाहिए धीर पुरुष से सुन करके, बाय हियरिंग फ्रॉम ऑथोराइज्ड पीपल। प्रभुपाद लिखते हैं, द धीरास हैव कम टू नो ऑल दिस फैक्ट्स बाय हियरिंग देम फ्रॉम सुपीरियर अथॉरिटीज। जैसे हमने चर्चा किया अभी, तो अपने गुरुजन से सुनकर ये सीखते हैं और सभी नियम का पालन करके, और आध्यात्मिक गुरु को चुस्त रूप से फॉलो करके, तभी व्यक्ति धीर बन सकता है और तभी वो दूसरे को ये ज्ञान प्रदान कर सकता है। सो दीज आर रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट, अन्यथा इट इज अविद्या, और अविद्या मनुष्य को क्या कहा गया है, भक्तिवत ठाकुर कहते हैं इसके विषय में, नाना योनि सदा फिरे करदये भक्षण करे तार जन्म अर्ध पाते जाए। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो नाना योनि सदा फिरे, जो लोग भगवान की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं वो लोग क्या करते हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, नाना योनि सदा फिरे, वो अलग अलग योनियों में गिरते रहते हैं, कभी कुत्ते बनते हैं, कभी बिल्ली बनते हैं, कभी चूहा बनते हैं, कभी छिपकली बनते हैं, तो इस तरह से वो नाना योनि सदा फिरे, कर दे भक्षण करे, कभी सुअर बनते हैं और क्या क्या का क्या खाते है, कर दे का अर्थ है विष्ठा जैसा भक्षण करे, तार जन्म अध पाते जाए, ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है अधोगति के अंदर। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस सिचुएशन, अगर कोई व्यक्ति अविद्या की शरण लेता है तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ओके, सो एनी क्वेश्चन इन दिस श्लोक, और वी कैन गो टू नेक्स्ट श्लोक।
अपने यहाँ प्रैक्टिस जो मेंशन की हुई है के 13.8 से 12 तक वो मेंशन की, जो धीर पुरुष के अपने दो क्वालिटीज बताई, शायद तक मिस करी है।
धीर पुरुष क्या,
धीर पुरुष के अपने दो बताए, 18+2 बताया कुछ आपने, जो दो और है वो कुछ धीर पुरुष के है या मुझे पता नहीं आपने।
धीर पुरुष के हमने 5 या 6 चीज बताई धीर पुरुष कैसे होते हैं, तो ये 18 क्वालिटी को ग्रहण करता है, ये साथ साथ में भौतिक जो मोह है उससे पर डिस्टर्ब नहीं होता है वो, फिर अध्यात्म ज्ञान में वो रियलाइज होता है, और शोक या कामना नहीं करते किसी चीज की, फिर मनुष्य शरीर का सदुपयोग करते हैं, अर्थात वो कृपण नहीं है, वो ब्राह्मीण है, वो अपने ऑथोराइज जो गुरु होते हैं, गुरु परंपरा, जैसे अर्जुन ने कृष्ण से सुना उस तरह से विनम्रता से श्रवण करता है सुश्रुमा, और वो सभी वैष्णव सिद्धांत खास करके 4 नियमों का पालन और वैष्णव सिद्धांतों का पालन करता है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ धीरा।
ओके
मोर क्वेश्चंस।
और एक था कि इसमें फिफ्थ चैप्टर का जो श्लोक है ना पंडित समदर्शिन वो के लिए अप्लाई हो सकता है।
या पंडित समदर्शन इसलिए अप्लाई हो सकता है क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान को साक्षात्कार किया हुआ है। वो जानता है शरीर और आत्मा अलग अलग है तो वो पंडित इसलिए वो पंडित की श्रेणी में आता है। दैट कैन बी अप्लाइड हियर नो प्रॉब्लम। More questions? Okay, so we can go text number 12. Sorry, 11? Yes. Text number 11. Ye baya prasiddha sloka. Vidyam cha vidyam cha yastad vedo bhayam saha avidyaya mrityum tirtva vidyaya विद्यामृतम अश्नुते। अनुवाद पढ़िए।
जो अविद्या के कार्य प्रक्रिया तथा दिव्य ज्ञान को साथ साथ सीख सकता है केवल वही बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है और अमरता के पूर्ण वरदान का भोग कर सकता है।
अश्नुते, अश्नुते का अर्थ है भोगता है। भोक्ता का अर्थ होता है कि उसको ये लाभ प्राप्त होता है, ये बेनिफिट प्राप्त होता है। और अविद्या की कार्य प्रक्रिया को समझता है, अविद्या को ग्रहण नहीं करता है, उसकी कार्य प्रक्रिया को समझता है और दिव्य ज्ञान को सीखता है। सो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो जन्म मृत्यु के प्रभाव को पार कर सकता है। सो अगर आप पिछले श्लोक के साथ इसका कनेक्शन देखे तो दसवां तो हमने बताया कि उसमें ज्ञान किस कल्चर को अगर सिखा जाए तो उसका अज्ञान से बिल्कुल विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। और मंत्र 11 जो है वो यह डिक्लेयर करता है कि उसका जो परिणाम प्राप्त होता है विद्या प्राप्त करने का उसमें आपको अमृतत्व अथवा आप जन्म मृत्यु के चक्र को पार कर सकते हो, उसके पूरे आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। तो मेन थीम क्या है कि अविद्या कितनी भी एडवांस हो, चाहे आप एमए पीएचडी हो या आप कितनी भी एडवांस अविद्या प्राप्त किया हो, लेकिन ये आपके जन्म मृत्यु के चक्र को रोक नहीं सकती है। लेकिन विद्या का स्पर्श करने मात्र से आध्यात्मिक ज्ञान का वो आपको जन्म मृत्यु के चक्र को रोक देती है तुरंत। सो दैट इज द पॉइंट हियर वी शुड डिस्कस। इन शॉर्ट जन्म मृत्यु के चक्र को रोकना ये इसके बीच का बहुत ही महत्वपूर्ण डिवीजन है। आई मीन व्हाट इज द मेन श्लोक का जो मेन सब्जेक्ट मैटर है वो अमृतत्व अर्थात जन्म और मृत्यु के चक्र के प्रभाव को रोकना। दैट इज द पॉइंट। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु का चक्र। और उसके सॉल्यूशन क्या है? दो सामने पड़े, एक है विद्या और एक अविद्या। और इसमें विद्या क्या करता है और अविद्या क्या करता है इसको हमें समझना चाहिए। सो ईशोपनिषद हमें ऐसा सिखाता है कि हमें वन साइडेड अटेम्प्ट या एक तरफा प्रयास नहीं करना चाहिए। ये एग्जिस्टेंस स्ट्रगल, एग्जिस्टेंस के स्ट्रगल, अस्तित्व के संघर्ष को मिटाने के लिए भौतिक जो विज्ञान है वो बड़े बड़े न्यूक्लियर वेपन क्रिएट कर सकता है और वो हमारी मृत्यु की प्रक्रिया को तेज बना सकता है। लेकिन जन्म मृत्यु चक्र का वो रोक नहीं सकता। सो इन अदर वर्ड्स मटेरियल ह्यूमन लाइफ का जो एम है तो परवर्टेड सेंस एंजॉयमेंट को एंजॉय करना नहीं है, किंतु रोग को दूर करना है। हमारी एक्चुअली यहाँ पर बैलेंस अप्रोच की बात हुई है। तो बैलेंस अप्रोच की बात क्यों हुई है, क्यों एग्जांपल अगर आपको पता है, एक एक घर में एक काम वाले थी और एक उनकी मालिक की पत्नी थी, दोनों को ही बुखार था। तो चेक किया दोनों के बुखार को, तो जो काम वाली बाई थी उसका बुखार 102 था और आपकी ये उनकी जो मालकिन थी उसका बुखार 100 था, मीन्स वो बहुत कम था और वो 102 था। और जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि इसका 102 और इसका 100 है तो चिल्लाने लगी, मैं यहाँ की नौकरानी नहीं हूँ, मैं यहाँ की मालकिन हूँ, उसका 102 और मेरा 100 कैसे हो सकता है, उसका ज्यादा कैसे हो सकता है, मेरा होना चाहिए। आई मीन आई शुड बी द तो आइडिया इज नॉट 100 and 102, आइडिया इज दैट वन शुड बी नॉर्मल। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति 105 या 107 फीवर आता है या 105 चला जाता है, दैट इज टू मच। इन अदर वर्ड्स, बॉडी ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बॉडी गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो रोग जो है वो बैलेंस रूप से इसको क्योर करना चाहिए, मटेरियल डिसीज को। 98.6% होता है वो नॉर्मल माना जाता है टेम्परेचर, सो दैट थिंग हैज टू बी कल्टीवेटेड। सो दैट बैलेंस अप्रोच इज रिक्वायर्ड। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि इसका अर्थ हमें समझना इस तरह से चाहिए कि बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, भाई आपको शरीर प्राप्त हुआ है, आप शरीर को त्याग नहीं सकते, तो शरीर की जो आवश्यकता है उतनी आवश्यकता पूरी करो। जैसे आपको भोजन चाहिए खाइए, कपड़े पहनने के लिए चाहिए ठीक है, आपकी शरीर की कुछ रिक्वायरमेंट है, नहीं सोना पड़ता है सो जाइए। सो दिस जो भी हमारी मेंटेनेंस के लिए आवश्यकता होता है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उद्देश्य क्या होना चाहिए, विद्या को प्राप्त करना, ये उद्देश्य होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, इस संसार के जितने भी कष्ट या दुख हमें प्राप्त हो रहे, चाहे वो कोरोना हो या रोग हो, बुढ़ापा हो या फिर कोई भी चीज, वो ये हमें बार बार याद दिला रही है कि हमारा कोई पावर नहीं है, हमारी कोई शक्ति नहीं है, और हम यहाँ इस डर संसार में रहने के लिए फिट नहीं है। हम यहाँ इस भौतिक जगत में हमारे लिए रहना ये उचित स्थान नहीं है। तभी वो क्या करता है, बुद्धिशाली व्यक्ति क्या करता है, समझ जाता है इस बात को कि दिस वर्ल्ड इज नॉट फिट फॉर जेंटलमैन, इस स्थान रहने के लिए योग्य नहीं है, और इसलिए विद्या को ग्रहण करने में लग जाता है, और ये विद्या ग्रहण कर करके अपने जीवन का सदुपयोग करने का प्रयास करता है। उसको शरीर को ठीक रखने के लिए हेल्दी रहना पड़ता है, दैट इज एक्सेप्टेड, और उस शरीर को हेल्दी रखने के लिए और उसको शक्ति उसको साफ बनाने के लिए जो मन चाहिए, मन भी तो चाहिए उसको अच्छा रखने के लिए, तो मन विद्या के माध्यम से स्वस्थ रह सकता है, और वही जीवन का चरम लक्ष्य है। क्योंकि जो भी आप प्राप्त करते हो, ये व्हाट यू कॉल धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका उद्देश्य क्या है अंतम, ये चार पुरुषार्थ बताए गए हैं, लेकिन ये चार पुरुषार्थ जो है उसका जो मुख्य परिणाम है वो है पंचम पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ क्या है, कृष्ण भक्ति, चार पुरुषार्थ से पर है, ये उसका उद्देश्य है। सो इन समरी, हमारा जो मुख्य जो कष्ट है, प्रॉब्लम है, वो है कोई व्यक्ति ये चाहता नहीं है, वो प्रॉब्लम व्हाट इज दैट कॉमन टू ऑल, नोबडी वांट्स इट, एंड व्हाट इज थर्ड,
नोबडी कैन अवॉइड इट,
Yes, so these are the three criteria. That is your real problem. So, कोई उसको चाहता नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता है, और एक समान रूप से सबको लागू होता है. तो ये जो प्रॉब्लम है उसको रियल प्रॉब्लम माना जाता है. और ये प्रॉब्लम जो है वो कौन हमें इम्पोज करता है हमारे ऊपर, हमारे भौतिक प्रकृति. और ये जो प्रॉब्लम है उसके सामने भौतिक प्रकृति कोई आपको इम्यूनिटी नहीं देती. देयर इज नो इम्यूनिटी बूस्टर हियर इन दिस. और ये जो प्रॉब्लम है, समझ लो कि ये प्रॉब्लम तो हमें प्राप्त हुआ मटेरियल वर्ल्ड का, लेकिन ये प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीगेट होता है, और ज्यादा विकृत या और ज्यादा हाउ यू से बिगड़ता है जब आप मटेरियल एजुकेशन प्राप्त करते हैं. जो आप भौतिक शिक्षण प्रणाली आपको जो सिखाती है, या अविद्या, इन शॉर्ट अविद्या आपको जब सीखने को प्राप्त होती है, ये आपको बंदर को शराब पिलाने जैसा होता है. तो बंदर तो था ही, ऊपर से उसको शराब पिलाई तो अब तो वो गया काम से. तो ऐसे नूनम प्रमत्ते कुरुते विकर्मा, ये विकर्म करने वाले लोग फिर खड़े हो जाते हैं. फिर इतने पाप करते हैं कि उनको जन्म जन्म तक नरक में रहना पड़ता है. दिस इज कलियुगा, बिकॉज ऑफ कलियुगा. एग्जाम्पल इज हिरण्यकशिपु. हिरण्यकशिपु का अर्थ क्या है? हिरण्य का अर्थ होता है सोना, और कशिपु का अर्थ होता है बिस्तर. तो धन और कामिनी उसके अंदर फंसा पड़ा रहता है हिरण्यकशिपु. और उसने क्या किया था? अपनी तपस्या के माध्यम से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था. ब्रह्मा जी उसको प्रसन्न किया था, और मूर्ख नहीं था वो, बुद्धिशाली था. इसको बोलता कनिंग जेंटलमैन था वो हिरण्यकशिपु. लेकिन उसको नरसिंहदेव स्वयं आकर के, हिरण्यकशिपु इज सो फॉर्चुनेट, नरसिंहदेव खुद आकर के उसको वध किया. So that is what he can get maximum. This is a story. और इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भगवान देते हैं ये प्रॉब्लम का. क्या सॉल्यूशन है? कि आपको शास्त्र दिया जाता है, अपने बोनाफाइड भक्तों को भेजते हैं भगवान, और कभी कभी खुद अवतार लेते हैं, अपने धाम को छोड़ के जाते हैं. गोवर्धन, यमुना, ब्रजरज, ये सब कुछ छोड़ के जाते हैं. और हमें क्या करना है? हमें एक तरफा प्रयास नहीं करके भगवत धाम जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है, और भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को सीखना है, पढ़ना है. कौन इसको स्वीकार करेगा? जो मनुष्य समाज में रहते हुए बुद्धिशाली है वो लोग इसको स्वीकार करेंगे. और कौन इसको स्वीकार नहीं करेगा? जो नराधम होते हैं, जिसको कोई लेना देना नहीं, वो इसको रिजेक्ट करेगा. सो जैसे हमने चर्चा किया था शुरुआत में, कि ये प्रॉब्लम और सॉल्यूशंस जो है, जो मेजर प्रॉब्लम, हमारा मेन प्रॉब्लम है, उसका जो सॉल्यूशन है उसमें विद्या का और अविद्या का क्या रोल हो सकता है, वो हमने अभी आपको बताया था समरी के रूप में. तो इसमें अविद्या का रोल क्या होता है? हमारे प्रॉब्लम को एग्जैक्यूलेट करना, मीन्स हमारे भौतिक ज्ञान को बढ़ाना, इंद्रियों को और भड़काना, और जन्म मृत्यु के मार्ग को छोटी सी गली से उस मार्ग को बड़ा हाईवे बना देना. काम, क्रोध, लोभ आदि तीन नरक के हाईवे बन जाएंगे फिर बाद में. और मूर्ख व्यक्ति इस प्रकार की विधि को स्वीकार करता है, और ये क्रूअल प्रोसेस माना जाता है, इसको क्रूर विधि इसको स्वीकार करता है. और ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? क्योंकि माया शक्ति से मोहित हो चुके हैं. परिणाम क्या आता है? उनका भौतिक बुखार धीरे 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 बढ़ता जाता है. और उनके लिए कोई होप है? कोई आशा है उनके लिए? हाँ, आशा है. क्या? इंद्रिय तृप्ति से आत्म साक्षात्कार के प्रति आगे बढ़े, और विद्या प्राप्त करने के आगे बढ़े. तो और विद्या का रोल क्या है? विद्या का रोल है कि विद्या वास्तव में है क्या, वो आध्यात्मिक ज्ञान मनुष्य समाज को प्रदान करता है। हमें विद्या इसलिए चाहिए क्योंकि जब हम अज्ञानता से मुक्त हो जाएंगे तभी वास्तविक आनंद को प्राप्त करते हैं। हमारे मोह से हमारी मुक्ति कराते हैं, भौतिक रोग हमारा नष्ट हो जाता है और हम अपने आत्मा की स्थिति में स्थिर हो सकते हैं। और ये हम कैसे स्वीकार समझ सकते हैं, विद्या के माध्यम से या फिर उसका लक्षण कैसे होते हैं या उसको कैसे क्या करता है ऐसा आदमी जो विद्या ग्रहण करता है, वो साउंड माइंड अर्थात तीक्ष्ण मन के साथ स्वस्थ जीवन जीता है। वो गधे की तरह इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है, वो नेक्टर ऑफ डिवोशन जैसे ग्रंथों को पढ़ता है। भगवद गीता के 18 ज्ञान के जो विद्या के बताए गए ज्ञान अंग उसको फॉलो करता है। और तस्मात एकेन मनसा भगवान शाश्वताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च निश्चला। ऐसा व्यक्ति शाश्वताम पति भगवान का एकेन मनसा व्यवसाय आत्म का बुद्धि से निरंतर भगवान की चिंता करता है, स्मरण करता है। सो दैट इज विद्या एंड अविद्या का मेन जो यहाँ श्लोक में बताया है, विद्याम च अविद्याम च। विद्या प्रभुपाद सेड कि 108 उपनिषद में से 9 उपनिषद सबसे उत्तम है, सबसे मुख्य है, उसमें ईश्वर उपनिषद सबसे पहला है। इसके अतिरिक्त बाकी के जो कुछ उपनिषद है वह तैत्तरीय उपनिषद, मुंडक के उपनिषद, मांडू के उपनिषद, ये सब हमने पहले चर्चा किया था। सो प्रभुपाद हैज गिवन ऑल दिस थिंग इन वन ऑफ मेनी डिफरेंट लेक्चर्स कि अविद्या से मृत्यु प्राप्त होती है और विद्या से जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट होता है। तो विद्या को प्राप्त करने के लिए सगुरुमेवाभिगच्छेत, अर्थात इसमें कोई चॉइस नहीं है कि ठीक है तुम्हें इच्छा है तो आध्यात्मिक गुरु के पास जा सकते हो, नहीं इच्छा है तो भी चलेगा, ग्रंथ तो पढ़े ही है, खुद पढ़ के पढ़ सीख सकते हैं, ऐसे लर्न इट, नो प्रॉब्लम। नो, प्रभुपाद सेज इंजंक्शन क्या है, गच्छेत। गच्छेत का अर्थ होता है मे नॉट गो, मे गो ऐसा नहीं, मस्ट गो। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्। मस्ट गो, आपको जाना ही चाहिए, ये मस्ट गो, देयर इज नो ऑप्शन। अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए मस्ट गो अध्यात्म गुरु के पास। जो भौतिक ज्ञान में बहुत एडवांस होते हैं वो क्या सोच समझते हैं, ये कृष्ण भावनामृत क्या होता है, व्हाट इज दैट, उनको इसका कोई आकर्षण नहीं है। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल दिए थे कि भारतीय जो लड़के लड़कियां विदेश में जाते हैं टेक्नोलॉजी सीखने के लिए और ये लोग कभी कभी क्वेश्चन करते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने वैदिक संस्कृति का त्याग कर दिया था और हम यहाँ विदेश में आए हैं टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, लेकिन हम वो देख रहे हैं कि स्वामी जी ये विदेशी लोगों को ही वैदिक संस्कृति सिखा रहे, तो वो लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे कंसिडर इज विद्या, और असली विद्या है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। प्रभुपादिक जी का कहना था वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इमिटेशन करने में कोई लाभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोग प्रभुपाद से, एग्जैक्ट प्रभुपाद के शब्द है, दे डू नॉट सी दैट दोज हु आर एडवांस 300 टाइम्स मोर देन अस इन टेक्नोलॉजी। ये लोग हमारी टेक्नोलॉजी से 300 गुना ज्यादा आगे है, फिर भी उनके हाथ खाली है, रिक्त है, नथिंग। And these people, they cannot see this. India cannot advance in technology like America and Europe, at least for next 300 years. हम 300 साल जितना पीछे हैं, but India इसलिए पीछे दिख रहा है because India was following Vedic culture. बिगिनिंग फ्रॉम द क्रिएशन व्यासदेव को आप देख लो, छोटी सी कुटिया में रहते थे, लेकिन उन्होंने लाखों की संख्या में ज्ञान के श्लोक प्रस्तुत किए। एक एक श्लोक को समझने के लिए पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, कम पड़ता है, लाखों की संख्या में हमारे लिखा। अबाउट एस्ट्रोनॉमी, नॉट ओनली वैदिक ज्ञान, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, सब कुछ वो उन्होंने प्रस्तुत किया वेदों में। आप कोई लोग बोलते हैं हमारे पास प्लेन है, एरोप्लेन, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्या वैदिक संस्कृति में प्लेन नहीं थे पहले कभी? आप पुराणों में से ये सिस्टम, ये ज्ञान प्राप्त करते हो कि पहले भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेन थे, इतने अच्छे प्लेन थे कि कुछ मिनटों में आप दूसरे ग्रह में जा सकते हो। यहाँ पर तो कितना फ्यूल चाहिए उसका कोई भरोसा नहीं है, हाईजेक भी हो जाता है, उसको लैंडिंग करनी पड़ती है, क्रैश हो सकता है, नॉइस करता है, यू नो, आपको पड़े रहना पड़ता है एक छोटी सी सीट के पीछे, यू नो, आप कुछ नहीं कर सकते, कैन नॉट सी आउटसाइड एनीवे। लेकिन अर्जुन गया था स्वर्ग, तो ये नहीं मानना चाहिए कि मटेरियल एडवांसमेंट इज एवरीथिंग। विद्या जो शास्त्र विद्या है वो सब सिखाता है, एवरीथिंग इज गिवन देयर। अर्जुन के पास ऐसे ऐसे विद्या थी, धनुर्विद्या अकेले इतनी सॉलिड है कि वो एक स्थान पर बैठे हुए 5-10 किलोमीटर दूर वो बिना कोई जीपीएस खोले हुए धनुष से बाण चलाता था, और एक चींटी को मारना तो एक चींटी ही मरती थी 10 किलोमीटर दूर पे, विदाउट सीइंग, दैट वाज ही। वो ऐसी विद्या थी उसके पास, बारिश ला सकते थे, अग्नि ला सकते थे, गायब होने की विद्या थी अर्जुन के पास। सो ऑल दिस थिंग ही हैड ऑलरेडी। और ये आप कोई किसी भी हालत में मटेरियल साइंटिस्ट इतना तक पहुंच ही नहीं पाएंगे कि आदमी का आदमी पूरा गायब हो जाए और यहां से बैठे बैठे पाकिस्तान, चाइना जैसे शत्रुओं को वो यहां से बैठे बैठे एक धनुष, एक तीर छोड़ करके उसको समाप्त कर सके। सो We have no idea. हमारे पास कोई आइडिया नहीं है कि विद्या कितनी महत्वपूर्ण है। We are so doomed because of this so called avidya. हमें लगता है कि यही सब कुछ है। So like this is the summary of 11. So now we can go to text number 12. Any questions?
Hare Krishna Prabhu. आपने हिरण्यकश्यपु का मीनिंग क्या बताया था मुझे, एक मिनट फिर से रिपीट करेंगे।
हिरण्य का अर्थ होता है सोना, कश्यपु का अर्थ होता है गद्दा या बेड। कश्यपु, कश्यपु को कहीं पर तकिया भी बोलते हैं, लाइक दैट। और कोई क्वेश्चन?
एक यहाँ पे बताया गया कि जो विद्या जो है उसका रिजल्ट है लिबरेशन और गेटिंग आउट ऑफ द साइकिल ऑफ डेथ। हम योगा लेटर में देखते हैं कि ज्ञान योगी जो है,
yeah.
जो है वो भी ज्ञान लेते हैं, वो भी इन कैटेगरी में इंक्लूड होते हैं।
ज्ञान योगी जो वेदों का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते वो लोग,
ये जो बेसिकली इंपर्सनलिस्ट है, मायावादी है।
लेकिन जैसे ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य भी सामने होना चाहिए। जैसे हमने बताया ना कि वो लोग, इनका समस्या क्या होता है कि विद्या और अविद्या, ये जो मायावादी प्रकार के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि अविद्या का त्याग करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये मना किया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया है कि बैलेंस अप्रोच होना चाहिए, इम्बैलेंस अप्रोच नहीं होना चाहिए। ये वो लोग क्या करते हैं, ब्रह्म जगन मिथ्या बोलते हैं, जो ये सिद्धांत के विरुद्ध जाता है, इसलिए वो लोग गिर जाते हैं। एक्चुअली वो 12 नंबर का जो श्लोक है उसमें ये आता है इस विषय में, ये जो सो कॉल्ड गुरु होते हैं, जो तथाकथित गुरु, वो कैसे लोगों को मिसलीड करता है।
मोक्ष तो मिलता है पर ब्रह्मन में मिल जाएगा मोक्ष की
प्राप्ति, गिर जाते हैं,
हाँ गिर जाते हैं,
परम पतन पतन दिया था उनका, पतन हो जाता, गिर जाता है।
अमरत्व का वो नहीं मिलता है जो इस श्लोक में बताया गया, विद्या से
वो अमरत्व तो प्राप्त नहीं कर सकते,
सिर्फ भक्ति की बात है, जो भक्ति से लिबरेशन मिलता है जो
नहीं है, भक्ति से,
भक्ति से जो लिबरेशन मिलता है या फिर भक्ति करने से, उसमें ही अमरत्व का है ऐसे बताया गया।
यस, लेकिन जो लोग परमात्मावादी होते हैं और ब्रह्मवादी होते हैं उनको मुक्ति मिल सकती है, दे कैन गेट मुक्ति, लेकिन ब्रह्म वाली जो मुक्ति होती है कैवल्य मुक्ति, उसमें स्थिर नहीं रह सकता कोई। और परमात्मा या जो साधारण जो मुक्ति मानी जाती है परमात्मा का ध्यान करने वाला, वो अंत तो कहते हो भक्ति योग में स्थिर होता है। जैसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चार का जो मूल उद्देश्य है वो है भक्ति के पंचम पुरुषार्थ को स्वीकार करना। बिना भक्ति के मोक्ष शायद मिल सकता है, ऐसा नहीं कि भक्ति वाले को ही मोक्ष मिलता है, बिना भक्ति के भी मोक्ष आपको मिल सकता है, निर्गुण निराकार में विलीन हो सकते हैं, बट दे कैन नॉट स्टे देयर लॉन्ग, उनको गिरना पड़ता है। बिकॉज जीव जो है वो आनंदमय है और कैवल्य में आनंद नहीं होता है, और आनंद जो है वो केवल आराधनी शक्ति से या जिसको हम कहते हैं विज्ञानमय अवस्था में ही, आनंदमय अवस्था में ही प्राप्त होती है, विज्ञानमय अवस्था में वो प्राप्त नहीं होता है, केवल आनंदमय अवस्था, दैट इज डिवोशनल सर्विस।
परमात्मा पे फोकस करते हैं उनको मोक्ष तो मिलता है, पर वो फिर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मिलता है जैसे ड्यूटीज को मिलता है या फिर उनको
अष्टांग योग की विधि करने वाला चाहे वो ब्रह्म का ध्यान करे तो ब्रह्म लोक में जाता है, परमात्मा का अगर वो चिंता करता है तो वो मैक्सिमम वैकुंठ लोक में जा सकता है, लेकिन उसमें वो प्रेम का रिसिप्रोकेशन नहीं होता है। बट दैट डिवोशनल सर्विस जो भगवान का उपासक है, भक्त जो होता है, वही अंत में भगवान के साथ प्रेम का एक्सचेंज कर सकता है। परमात्मा पर्सन कैन ऑल्सो गेट लिबरेशन, बट दैट इज ही इज मोस्टली आफ्टर मर्जिंग द गॉड, अगर इज नॉट आफ्टर मर्जिंग द गॉड देन इट टेक्स टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्योंकि परमात्मा वाला जो भक्त होता है वो अंत में भक्ति योग की ओर मुड़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में नारद मुनि पूर्व जन्म में परमात्मावादी थे, वो परमात्मा परमात्मावादी, तो परमात्मा का चिंतन तो किया उन्होंने, लेकिन परमात्मा की साधनाओं की सफल हुई तो भगवान उनके सामने प्रकट होकर के, वही परमात्मा जो उनके हृदय में थे वही भगवान उनके सामने चार हाथ वाले प्रकट हुए और उनको भक्तियों का आशीर्वाद दिया, उनको कहा कि तुम भक्तियों का पालन करो। सो दैट इज व्हाट इज उनका जो अचीवमेंट है वो अंत तो भक्तियों में परिवर्तित हो गया। So we can call in other words that Paramatma realization is more or less kind of a shant realization, जिसमें exchange नहीं होता है। जो पांच प्रकार के रस होते हैं भक्ति में, उसमें चार को वैष्णव आचार्य गिनते हैं, पांचवा जो होता है वो is more or less like a no exchange. So that can be considered that way.
Okay, thank you for ध्रुव महाराज का
एग्जांपल
ले सकते हैं, जैसे कि
ध्रुव महाराज वाज परमात्मा का चिंतन करने वाले भक्त थे, व्हेन ही वाज गिवन अपॉर्चुनिटी देन भगवान ने अपना संख उसके सिर पे रखा एंड देन ही बिकेम डिवोटी।
ओके, और जस्ट नोट किया मैंने, जस्ट वहीं पे सुना था कि एक श्री प्रभुपाद के डिसाइपल है और उन्होंने पीएचडी की इंटेलिजेंस में, तो बता रहे थे बहुत ही पुराना वीडियो तो मैंने देखा, उन्होंने बता रहे थे कि कैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने जो शास्त्र एक विमान शास्त्र उसका प्रयोग करके अपना क्या कहते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग एरोनॉटिक इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट किया था सेकंड वर्ल्ड वॉर।
ऐसा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे गुरुकुल में धनुर्वेद की शिक्षा दी जाती है। धनुर्वेद की शिक्षा केवल तीर चलाना नहीं होता है, धनुर्वेद तो बहुत तंत्र वंत्र मंत्र सब उसके साथ मिक्स होता है धनुर्विद्या, जैसे आप देखते हो प्राचीन काल में लोग सीखते थे मंत्र मंत्र बोल करके छोड़ा हुआ बाण, तो इसका ऐसे चमत्कारी इफेक्ट होता था। सो ऐसी विद्या भी सिखाई जाती है गुरुकुल में, बट इज वेरी डिफिकल्ट क्योंकि आज कलयुग जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये धनुर्वेद आयुर्वेद ऐसी जो विद्याएं हैं वो कमजोर होती जाती है धीरे धीरे।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
यस,
अभी भी एग्जिस्ट करते हैं क्या धनुर्वेद? मतलब इसका इस्तेमाल भी होता है?
इस्तेमाल करने वाले लोग नहीं है ना, कोई सिखाने वाला नहीं है, कौन सिखाएगा? सिखाने वाले सब चले गए, अभी कोई बचा नहीं है कि जो सिखा सकता है धनुर्वेद, क्योंकि सिखाने वाले को सबसे पहले खुद इसको मास्टर करना पड़ता है, और मास्टर करेगा तो वो एक अकेला ही सारी सृष्टि को राज करने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। धनुर्विद्या सीख लिया उसने अच्छी तरह से तो कौन चाइना का बॉस, कौन अमेरिकन प्राइम मिनिस्टर, कौन ही हिमसेल्फ इज द बॉस ऑफ एंटायर वर्ल्ड, इसलिए कलयुग में सब कमजोर होने लगा है सब सिचुएशंस। तो लाइक दिस, बट स्टिल हमारे गुरुकुल के जो टीचर्स हैं वो थोड़ा बहुत जितना उनको खुद सीखते हैं विद्या जितना उनका आता है उस हिसाब से वो सिखाते हैं।
ओके प्रभु जी, एक क्वेश्चन है, आपने ये बताया कि अविद्या का अगर मैं जितना भी नॉलेज मटेरियल नॉलेज जितना भी हो ही कैन नॉट क्रॉस द साइकिल ऑफ आई मीन कम आउट ऑफ द साइकिल ऑफ दिस बर्थ डेथ रीबर्थ वाला, और नॉलेज का अगर स्पर्श भी करता है तो उसको ये साइकिल से मुक्ति प्राप्त होती है। सपोज इफ ए पर्सन ही जस्ट एंटर्स नॉलेज एंड देन ही कम्स टू नो कि ये मटेरियल लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है ही कैन नॉट कम आउट ऑफ इट एंड ही कमिट सुइसाइड, सपोज इफ ही कमिट सुइसाइड, तो लाइक विल ही बी इन द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ?
ही इज गिवन अनदर चांस,
ही इज गिवन अनदर चांस ऑफ ह्यूमन बीइंग टू कम आउट।
यस, नो नॉट डायरेक्टली ह्यूमन बीइंग, अगर उसने आत्महत्या किया है तो उसको पहले भूत तो बनना पड़ेगा एक बार।
हाँ, वो जितना उसका भगवान ने
कोटा था,
हाँ
वो कोटा पूरा करना पड़ेगा। तुम्हारा स्थान है कि भाई तुम 2022 में तुम्हें नया शरीर मिलने वाला है ऐसा किसी ने बोला है, और तुम उससे पहले ही अपना छोड़ दिया तो अभी भटको एक डेढ़ साल, तब जब तुम्हारा टाइम आएगा तब तुम्हारा ग्रीन सिग्नल होगा तब तुम्हें शरीर मिलेगा।
तो फिर वो जो शरीर मिलेगा मतलब अगेन एक और बार उसको नॉलेज प्राप्त करने का शरीर मिलेगा एंड देन ही कैन कम
आउट, हाँ मिलेगा उसको टच करने का।
वेस्ट ऑफ टाइम, अगर वो कितना भी सहन करना ही पड़ता है ही हैज टू टॉलरेट एंड नॉट गेट रिड ऑफ इट बाय कमिटिंग सुसाइड, राइट?
सज्जन व्यक्ति भी सुसाइड नहीं करता, जो भक्त नहीं है इसके पास ज्ञान नहीं है ऐसा व्यक्ति भी सुसाइड तो नहीं करता है।
Right. After entering to knowledge, a person will never commit suicide. You mean to say in that? But
you are not entering knowledge also never commit suicide. Very rare people. अभी तो क्या है कि लोग पागल हो रहे हैं, तो पागल होने के कारण सुसाइड कर रहे हैं, otherwise you know no sober person in material world even would ever do such full step. कोई सज्जन व्यक्ति भी ये नहीं करता सुसाइड तो।
तो कोई आउट ऑफ स्ट्रेस सुसाइड करता है, ओवर स्ट्रेस है, जो भी बोलता है, लाइक आई मीन ऑल अ पर्सन कुड बी वेरी नाइस बट देन इंटरनली ही माइट बी हैविंग सम स्ट्रेस एंड देन ही माइट कमिट. So knowledge wise he might be having some knowledge, not some knowledge, quite good knowledge, but then he's not able to implement it.
He has made a mistake by committing suicide. Now he has to face that.
Right.
उसको ये आत्महनो, वो शरीर छोड़ने वाला है, उसको भी मिलता है, एक आत्महनो होता है, तो दोनों को इसका परिणाम भोगना पड़ता है. ओके सो वी कैन गो टू मंत्र 12. ओके सो यहाँ पर मंत्र 12 जो है वो 12, 13, 14 तीन मंत्र है एक कंटिन्यूएशन में. इसमें देवताओं की पूजा, निराकार की पूजा और भगवान की पूजा, ये तीन पूजाओं की चर्चा है एक एक श्लोक में संक्षेप में. इसका कनेक्शन किस तरह से पिछले श्लोक के साथ कि मनुष्य को विद्या को स्वीकार करके अविद्या रूपी भौतिक जो कंसेप्ट होते हैं उसको पार करना चाहिए, उसको लांग लेना चाहिए, इसका वर्णन था 11वें में. अब 12वें में दो प्रकार के लोगों का वर्णन होता है जो यह कार्य नहीं कर सकते. 12वें श्लोक में ऐसे दो प्रकार के लोग हैं जो यह कार्य नहीं कर सकते जो 11वें में बताया था, और उन लोग का क्या उनको परिणाम क्या प्राप्त होता है ये भी इसके अंदर वर्णन आता है. तो इस श्लोक का जो मेन थीम है वो किस तरह से है कि जो मायावादी लोग होते हैं उनके बहुत ही छोटे मस्तिष्क से, उनकी शक्ति बहुत कम होती है, वो परम सत्य को नहीं समझ सकते. उसी तरह से जो कम बुद्धि वाले देवताओं की पूजा करने वाले लोग हैं वो लोग भी नहीं समझ सकते. इन अदर वर्ड्स मायावादी और देवताओं के उपासक, ये दोनों का वर्णन इस श्लोक में आता है. सो पढ़िए टेक्स्ट नंबर 12 उसका अनुवाद.
जो देवताओं की पूजा में लगे हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, और इनसे भी बढ़कर वे जो निराकार ब्रह्म के पूजक हैं.
यस अंधम तमा प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूय इव तो इव ते तमो या उसंबुत्यामृता. संबुत्यामृता, संबुत्यामृता का अर्थ क्या होता है? मायावादी, ब्रह्म में उपासक, ब्रह्म की उपासना करने वाले लोग. और असंभूतिम, असंभूतिम का अर्थ क्या है? जो देवताओं की उपासना करने वाले लोग. यहाँ दो शब्द का उपयोग हुआ है, असंभूति और संभूति. सो विद्या कोई संबुद्धि और असंबुद्धि दे कैन नॉट अंडरस्टैंड. पेज नंबर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि संभूतियां जो होते हैं श्लोक से संभूतियां वो लोग होते हैं कि जो लोग निराकार की उपासना करने वाला है, और वो लोग ब्रह्म इन्फ्लुएंस, ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं, और जिसमें कोई निराकार अब ऐसा मानते कि भगवान का कोई रूप रंग आकर नहीं, वो एक प्रकार का अविद्या ही है. भगवान के विषय में गलत धारणा, ये अविद्या का एक तरीका है. लेकिन भगवान के भक्त जो होते हैं वो शरणागत हो जाते हैं भगवान को, और वो परमेश्वर को अच्छे से समझ सकते हैं, और सब कुछ उनसे प्रकट होता है ये भी समझ सकते हैं. तो ये उन दोनों में बड़ा परिवर्तन कॉन्ट्रैक्ट होता है, और असंभूति क्या है, नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, उनका कोई व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं। क्या ईशोपनिषद ये कहता है दैट हमें हमारी समस्याओं के लिए कोई टेम्पररी रिलीफ नहीं ढूंढना चाहिए कि मुझे इतना थोड़ा करने से थोड़ा मुझे लाभ मिल जाता है, और ऐसा करके किसी देवताओं के शरणागत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग तो केवल क्या देते हैं, बहुत ही क्षणिक देते हैं सब कुछ, काम रहना प्रपद्यंते अन्य अंतवत फलम देशा देवान देव जानते। ये सब श्लोकों का उच्चारण हमने भगवद गीता में किया था, सातवें अध्याय का 20वां 23वां श्लोक इसका चर्चा हमने किया था। और ऐसे लोग क्या करते हैं, डार्केस्ट रीजन में गिरते हैं, सबसे अंधकार में उसमें गिरते हैं। और ऐसे भी देखा जाए तो ये हमारा जो ब्रह्मांड का वास्तविक स्थिति है वो क्या है, वास्तविक स्थिति क्या होता है,
अंधकार
इज फुल ऑफ यू नो प्रकाश सूर्य चंद्र से आता है, सूर्य चंद्र ही ना हो तो इट इज डेंस डार्क। डेंस में भी कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1 डेंस, उसके थोड़ा और डेंस, मोर डेंस, डेंसिटी बढ़ती जाती है। दूर दूर तक अगर कोई लाइट नहीं है तो वो और ज्यादा डेंस हो जाता है, फिर आसमान में तारे से बादल बहुत ज्यादा है तो और भी डेंस हो जाता है, लाइक दिस बिकम मोर डेंस। सो परम सत्य को समझने के लिए कौन, पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि परम सत्य का जो तत्व है उनका स्थान क्या है। तो परम सत्य क्या है, पूर्ण रूप से संभूति। संभूति का अर्थ क्या है, वो सभी प्रकार से स्वतंत्र है, वो किस पर आधारित नहीं है। भगवान खुद कहते हैं ना आम सर्वस्व प्रभो, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम, देवताओं के आदि है, ऋषि नाम महर्षि नाम सर्वस्व, मैं ही उनका आदि हूं, और संभवामी मानुषिन तन्मास्तिता। क्या बोलते हैं भगवान, अपनी आत्मा माया से प्रकट होते हैं मनुष्य शरीर में। तो ये परम सत्य की वास्तविक स्थिति है। कौन नहीं समझ सकते भगवान को, एक तो मानसिक तर्क करने वाले मायावादी लोग नहीं समझ सकते, दूसरे प्रभुपाद कहते हैं देवताओं की पूजा करने वाले लोग नहीं समझ सकते, और तीसरे कि जो ढोंगी जो बाबा होते गुरु होते भक्त होते वो समझ नहीं सकते। ठीक है ना, नमस्कार। ए बी सी तीन प्रकार के लोग का होने हुआ इसके अंदर, मायावादी, देवताओं के उपासक, और स्वीडो या नकली दंभी दिवोली, दंभ करता है ऐसा। तो मायावादी लोग क्या करते हैं, मायावादी अपनी तुच्छ बुद्धि से परम सत्य को समझने का प्रयास कर सकते हैं। उनका उनका कंसेप्ट क्या है, परम सत्य का खुद का कंसेप्ट है वो, और कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, भगवान निराकार है, ये उनके कंसेप्ट है। So we don't, और वो नास्तिकवाद को सपोर्ट करते, और उनमें गलतियां क्या है उसकी चर्चा हमने ऑलरेडी की है, बट समरी के रूप में वो अज्ञानता का एक प्रतीक है, और परम सत्य का अपूर्ण व्याख्यान करते हैं, अर्थात वो लोग भगवान को वो अंधा है, भगवान लूला है, लंगड़ा है, देख नहीं सकता ऐसे। सो दिस इज देयर फॉल्ट, और भगवान की प्रकाश को भगवान मान लेते हैं, भगवान को स्वीकार नहीं करते। और ईशोपनिषद में एक भी मंत्र ऐसा नहीं है जिसमें भगवान को निराकार कहा गया हो। सो लाइक दिस मैक्सिमम उनको जो प्राप्त होता है वो है ब्रह्मन, मैक्सिमम। और डेमिगॉड वर्शिपर्स का क्या प्रॉब्लम है, डेमिगॉड वर्शिप का जो पूजा करने वाले उसका ये प्रॉब्लम है कि उनकी सबसे पहले उनकी बुद्धि वो कैसी होती है, वो सोचते हैं कृष्ण भी एक पावरफुल देवता है, यहाँ पर अटक गए। दूसरा, देवताओं के पास वो लोग क्यों जाते हैं, क्योंकि वो लोग मोहग्रस्त है, कम बुद्धि वाले हैं, इंद्र तृप्ति की बहुत तीव्र इच्छा है और उनको क्षणिक सुख चाहिए, टेम्पररी रिलीफ चाहिए, और उनका मैक्सिमम डेस्टिनेशन क्या है, उनको क्या मैक्सिमम प्राप्त होता है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक यहाँ पर सुख भोग मिलेगा, या तो फिर उनको देवताओं के लोक में स्थान मिल सकता है। तो इसका प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम यह है कि ब्रह्म भुवन आलोक का ब्रह्मा से लेकर सारे लोग सब टेम्पररी प्लैनेट है सब, और फिर भी ये व्यक्ति गिर जाते हैं ऐसे लोग अंधकार के अंदर। सो लाइक दिस डेमिगॉड वर्शिपर होते हैं, उनका अंधकारमय जीवन व्यतीत करते हैं। और ये तीसरा जो सूडो वर्शिपर्स है, जो ड्रामी पूजा के जो धोखेबाज बाबा है, तो ये वो चीटर्स होते हैं, अपने आप को धर्म ध्वजी अर्थात धर्म का पालन करने वाला बताते हैं अपने आप को, लेकिन नाम प्रतिष्ठा के लिए केवल लोगों को धोखा देते हैं। उनका इच्छा क्या होता है, उनको भौतिक संसार से बाहर आने का कोई इच्छा नहीं होता, आध्यात्मिक जगत में जाने का कोई इच्छा नहीं होता है, और उनको सोने की जंजीरों में पड़े रहना अच्छा लगता है, सोना गोल्डन, फिलान्थ्रोपिक कार्य करते रहते, समाज सेवा करते रहते, बड़े बड़े मायावादी जैसे सन्यासी बन करके हॉस्पिटल खोलते ऐसे सब कार्य करते रहते हैं और अपना रोजी रोटी कमाते उसमें से। उनकी पोजीशन कैसी होती है, उनके पास भौतिक आकर्षण से कोई वो मुक्त नहीं होते और उसके पास आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं होता, और संसार में ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं कि वो लोगों की भागवत में कि धर्म के नाम पे दूसरों को मिसगाइड करते हैं वो वास्तव में संसार के बड़े शत्रु हैं और लोगों की भावनाओं से वो छल करते हैं, तो उनको ब्रह्मा जी या बड़े बड़े ऑथोरिटी के माध्यम से उनको दंड भी दिया जाता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल लेते वो लोग, रोजी रोटी कमाते हैं उसमें से, लेकिन वास्तव में वो गिर जाते हैं। और फिर दरिद्र नारायण जैसे नए नए टर्म निकाल लेते हैं कि दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण, नारायण कभी दरिद्र हो ही नहीं सकता, नारायण को लोग दरिद्र बताते हैं। तो इन दिस वे दिस पीपल, उनका जो मैक्सिमम जो डेस्टिनेशन होता है वो डेस्टिनेशन क्या होता है, भगवदगीता के 16वें अध्याय में बताया वैसे सबसे डार्केस्ट रीजन में जाते हो अंधकार में, और मोस्ट ऑब्नॉक्सियस प्लेस जो होता है संसार का उसमें उनको फेंक दिया जाता है। उनके लिए कोई फायदा कोई उपाय है, ऐसे लोग बच सकते हैं अगर वो वैष्णव या भगवान की शरणागति स्वीकार करे तो वो लोग बच सकते हैं। That is why Prabhupada has also given the most dangerous element of society. संसार के लिए बोझा है, संसार के लिए बहुत खतरनाक लोग होते हैं ऐसे। देखिए बहुत सारे बाबा, जब मुझे सुनने में आया था कि एक बाबा को जो नॉर्थ इंडिया में रिसेंटली बहुत पता नहीं कितने साल हुए, 3-4 साल हुए बताए, वो रिसेंटली उसको पकड़ने के लिए वो व्यभिचारी था और बहुत ही लंपर आदमी था, तो उसको पकड़ने के लिए कितना 40,000 पुलिस के जवान, 40,000 पुलिस के जवान उस एरिया को घेर के रखा, तब जाकर उसको पकड़ा गया। सोचिए लाइक दिस, दिस पीपल आर आसुरिम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमाम गतिम, ऐसे व्यक्ति अधमाम गति को प्राप्त करते हैं। ओके, सो मंत्र 13,
कहा जाता है कि समस्त कारणों के कारण स्वरूप परमेश्वर की पूजा करने से एक तरह का फल मिलता है और जो परम सत्य नहीं है उसकी पूजा करने से दूसरी तरह का फल मिलता है। यह सब उन धीर पुरुषों से सुना गया है जिन्होंने इसका स्पष्ट रूप से वर्णन किया है।
तो कनेक्शन किस तरह से है 12वें 13वें के बीच में? 12वें में हमने सुना कि जो लोग परमेश्वर की सही तरीके से पूजा नहीं करते, तीन प्रकार के लोग, वो परमेश्वर को समझ नहीं सकते। 13वें में बताया गया है जो लोग सही ढंग से भगवान की पूजा करते हैं और धीर व्यक्ति जिसकी चर्चा आगे हुई थी, ऐसे लोगों के मार्गदर्शन में रह करके पूजा करते हैं, उनको क्या प्राप्त होता है, ये 13वें श्लोक में बताया गया है। और इसका मेन थीम अगर आप समझना चाहे तो कैसे है कि संभवत ही कृष्णा सभी कारणों के अंतिम कारण है और उनको धीर पुरुष या आध्यात्मिक गुरु की शरणागत होकर के ही उनको समझा जा सकता है, उनकी पूजा करके, और इसके अतिरिक्त तो और कोई तरीका है ही नहीं। सो दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस श्लोक। परमेश्वर की करेक्टली या सही तरीके से उनकी पूजा करना। सो इसको अगर आप इसके जो तात्पर्य है इसको अगर हम डिवाइड कर सकते हैं को वी कैन आस्क 10 डिफरेंट क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस वेरी नाइस लोक। सो हमने एक नोट बनाया है सो आई कैन स्पीक अबाउट दैट करेक्टली कि सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, ये ज्ञान विद्या किन से सीखना चाहिए, तो उसका आंसर क्या है, बोनाफाइड परंपरा के आचार्य से, और जो धीर है जो बहुत से संसार में विचलित नहीं होता ऐसे, फ्रॉम होम टू नो, किन से सुनना चाहिए, तो धीर से सुनना चाहिए, गुरु परंपरा से। एक दूसरा क्वेश्चन हो सकता है केवल उनसे ही क्यों, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर ये है कि वे कभी भी शास्त्र से बाहर का कोई ज्ञान नहीं बताते, एक परंपरा के से साथ जुड़े हुए हैं, दो, और वो अर्जुन की तरह उसी कदमों अर्जुन के कदमों पे चलने वाले हैं या भगवान के भक्त हैं, तीन, तो इसके कारण दूसरे किसी के पास से ये ज्ञान को नहीं सीखना चाहिए। एंड व्हाई नॉट टू वर्शिप एनीवन एल्स, दूसरों किसी की पूजा क्यों नहीं करनी चाहिए फिर, क्योंकि मूर्ख लोग ऐसा कहते हैं कि सारे किसी भी शरण में जाओ, किसी की पूजा करो, एक ही परिणाम मिलता है, किसी भी ट्रेन में बैठ जाओ दिल्ली पहुंच जाओगे। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो होंगी लोग, वो लोग वास्तव में अनऑथोराइज्ड होते हैं, इसलिए उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, और ये सेल्फ मेड गॉड होते हैं या सेल्फ मेड स्पिरिचुअल मास्टर होते, खुद ही गुरु बन बैठे होते, तो इसलिए दीज आर द पॉइंट्स वी हैव टू कंसीडर कि ऐसे लोगों की हम पूजा नहीं कर सकते। अगर हम पूजा करते हैं तो नो वी विल कंसीडर टू बी फूल। तो लाइक दिस we should understand this. So, कोई ऐसा अगर पूजा करवाता है, समझ लो कोई ऐसा है व्यक्ति अपने आप को गुरु बताता है और पूजा करवाता है, तो मूर्ख लोग को आकर्षित कर सकता है, अभिमान से चूर हो सकता है, और वो कंप्रोमाइज करता है चीजों में, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफर देता है कि तुम मेरे यहाँ पर $100 दक्षिणा दे दो तो तुम कोई नियम का पालन नहीं कर चलेगा, इसलिए ऐसे लोग की पूजा कभी नहीं करनी चाहिए। तो अभी करेक्ट वर्शिप जो सही में भगवान की पूजा क्यों करनी चाहिए, तो सबसे उत्तम पूजा किसकी होनी चाहिए, तो भगवान कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, संभवती उनकी पूजा होनी चाहिए। और कृष्ण जनार्दन भी है तो जनार्दन की सेवा करनी चाहिए, जनार्दन की सेवा, लोगों की सेवा करनी चाहिए, तो उसमें कौन सी उत्तम है, लोगों की सेवा भगवान की सेवा में। तो भगवान क्या कहते हैं, अगर तुम मूल के पानी डालोगे तो सब यू कैन गेट सर्विस टू ऑल। कैसे सेवना करते हो भगवान ने स्पष्ट खुद आके सिखाया, सर्वधर्म प्रत्यम चंद्र, ये खुद उन्होंने बोला है। और ये लोग कॉन्ट्रडिक्शन क्या करते हैं, फिलैंथ्रोपी करते हैं, जनसेवा करते हैं, लेकिन गाय को तो मार डालते हैं, तो फिर कौन सी जनसेवा कर रही है। सो शास्त्र भी इसका प्रमाण देते हैं, इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं हम सबसे प्रभाव, फिर सब अलग अलग उपनिषद, ब्रह्म संहिता, वराह पुराण, मोक्ष धर्म, नारायण उपनिषद, ये सब ये बताते हैं कि कृष्ण ही वास्तव में पूजनीय है। और इसका एग्जाम्पल भी है, अर्जुन ने खुद, अर्जुन इज एग्जाम्पल। भगवदगीता सुनने से पहले परेशान था, कंफ्यूज था, फैमिली सोसाइटी और कम्युनिटी के प्रति आकर्षित था, समाज सेवा करना चाहता था, अहिंसा पालन करना चाहता था, लेकिन जैसे भगवदगीता उसने सुना तो उसने क्या किया, बुधा भाव समन्विता, वो बुद्धिशाली हुआ, उसने अपना डिसीजन बदल दिया और सही में कृष्ण की सेवा करना उसने शुरू कर दिया। सो इन शॉर्ट इस पूजा का लॉजिक क्या है, भगवान जन्म मृत्यु के मूल स्रोत है, जन्म के मूल स्रोत हमारे परम पिता है, एक वो अभिज्ञ है अर्थात सब कुछ जानने वाले हैं, और इसलिए वो सभी चीज के मूल होने के कारण उनको ही जल अर्पण करना चाहिए। और कौन लोग उनकी शरण में नहीं आते हैं, एक तो जो मूढ़ा होते हैं, वो भगवान ने बताया नमाम दुष्कुंतिनो मूढ़ा, या जो मूर्ख होते हैं वो भगवान की अवहेलना करते हैं, नम अवजानते माम मूढ़ा, तो दैट इज दीज आर द पीपल दे कैन नॉट कम टू अस एंड कम टू द लॉर्ड। तो कैसे उनकी पूजा, अब चलो ये तो मान लिया कि कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, तो कैसे करनी चाहिए, श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से, श्रीमद भागवतम और भगवद गीता का जो बेसिक्स है वो सीखना चाहिए, उसका आधार सीखना चाहिए, और शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। अगर कोई भक्त ऐसा करता है, उसको ऐसा संभव थी सही तरीके से भगवान की शरणागत होकर के उनकी पूजा करता है, तो भगवान उनको हृदय से ज्ञान देते हैं, सिखाते हैं। कृष्ण भक्ति जैसा हमने एनओडी में सीखा था कि भगवान की प्रेम भक्ति और हमारा जो माया के अंतर्गत हम जो जीवन जी रहे उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो शरणागत भक्त होता है उसको तो स्वयं भगवान अंदर से हेल्प करते हैं, भगवान के ध्यान को आकर्षित कर पाते हैं, भगवान उसके सामने देखते हैं, फिर उसका हृदय सब प्रकार के कचरे से मुक्त हो जाता है। भगवान की कृपा से रजोगुण तमोगुण का प्रभाव सब नष्ट हो जाता है उसके वजह हृदय से, और केवल सत्वगुण में स्थिर हो जाता है। कितना भी नीच से नीच व्यक्ति भी हो, अधम से अधम काम करने वाला, वो भी वैष्णव की शरण लेकर के शुद्ध हो सकता है। ऐसे व्यक्ति के सामने भगवान का जो ज्ञान है वो एकदम साफ सुथरा प्रकट हो जाता है, साफ एकदम क्रिस्टल क्लियर बन जाता है उसका मन, उसका मन इतना स्वच्छ और शुद्ध होता है कि निरंतर उसके हृदय में भगवान वास करना पसंद करते हैं, और फिर धीरे धीरे वो नाम, भगवान के नाम को साक्षात कर सकता है कि भगवान के नाम है और भगवान में कोई अंतर नहीं। फिर और थोड़ा आगे बढ़ता है तो भगवान के रूप को देख सकता है दूर से, ऐसे भंग असली में भगवान के रूप को दर्शन कर सकता है। और आगे बढ़ता है तो भगवान के गुण का अनुभव कर सकता है, भगवान को जो मुलायम मुलायम शरीर है उनको उसको स्पर्श कर सकता है, भगवान के शरीर से निकलने वाली जो खुशबू है, अगुरु चंदन कर्पूर कस्तूरी कुमकुम कमल ये सब की जो सुगंध उनके शरीर से भगवान के शरीर से निकलती है उसको सुन सकता है, भगवान की आवाज सुन सकता है, ये गुण फिर आगे जाकर फिर भगवान की लीला, लीला में वो भगवान की लीला में सहायता कर सकता है, फूल तोड़ सकता है, उनका मसाज कर सकता है। इस तरह से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिर प्रगति होती है ऐसे भक्तों की, पर वो उसकी शुरुआत होती है हरि नाम के द्वारा। सबसे पहले भगवान के नाम को अनुभव कर सकता है, दैट इज द फर्स्ट बिगिनिंग। पर ये सब होता है कैसे? बाय परफेक्ट वर्शिप ऑफ द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड, जो शास्त्र के आधार से बताया श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से, दिस वे यू कैन मेक प्रोग्रेस इन दिस। और ऐसा नहीं कि ये संभव है प्रभु, ये तो हमारे जीवन में कब होगा पता नहीं, लेकिन प्रयास तो करना चाहिए ना हमें इसी जीवन में ये सब प्राप्त कर, उसके लिए जो कीमत चुकानी पड़े चुकाना चाहिए। भौतिक संसार में हम थोड़े बहुत चंद कुछ पैसों के लिए हम कोई भी कीमत चुकाने के तैयार हो जाते हैं, तो यहाँ तो प्रेम धन प्राप्त हो रहा है भगवान का, तो उसके लिए हम क्यों बार्गेनिंग करेंगे। तो दैट इज द बेस्ट वे ऑफ वर्शिप। तो ही इज द सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉड हेड, भगवान तात्पर्य में कहते हैं देयरफॉर वन शुड हियर अबाउट कृष्णा, भगवान के विषय में सुनना चाहिए, एंड देन हिज लाइफ इज सक्सेसफुल। तो वी हैव गॉट द समरी ऑफ द एंटायर पर्पोर्ट ऑफ दिस दिस वंडरफुल श्लोक ऑफ द उपनिषद। ओके, सो एनी क्वेश्चंस?
हरे कृष्ण प्रभु जी, जस्ट प्रीवियस श्लोक के साथ जो कनेक्शन आपने बताया था प्लीज रिपीट कर सकते हैं?
या हमने अभी जो कनेक्शन 11वें श्लोक में 12वें 11वें श्लोक में था कि अविद्या का पालन करने वाला, अविद्या और विद्या का 12वें श्लोक में हमने सीखा था कि जो करेक्टली वर्शिप नहीं करते उन लोग को, उनमें तीन प्रकार के लोग हैं, मायावादी, देवताओं के पूजक और ढोंगी लोग। तो ये लोग की जो रिजल्ट है उनकी, क्या बोलते हैं, उनकी जो गति है वो बहुत ही कष्ट वाली, अंधकार वाली। लेकिन 13वें में जो धीर पुरुष या वैष्णव या आध्यात्मिक गुरु गाइडेंस में रहकर के सही ढंग से पूजा करता है भगवान की, उसकी गति के विषय में यहाँ पर वर्णन किया।
धीर पुरुष की गति बोला कि परिणाम, मतलब
गति जो... परिणाम सेम।
हाँ, ओके ओके।
मोर क्वेश्चन।
हरे कृष्ण प्रभु जी।
Yes.
प्रभु जी, अपना कोई रिलेटिव ऐसे कोई डोंगी बाबा के उसमें एकदम इन्वॉल्व है?
Yes.
और हम कोशिश करते हैं कि उनको कुछ कृष्ण के बारे में बता के इससे बाहर लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इनफैक्ट वो ऊपर से वो ऐसा बोलते हैं कि आपको पता चलेगा कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, ऐसा। तो ऐसे लोगों की को कैसे हम समझा सकते हैं?
देखो, कुछ चीज ऐसी होती है कि जो हमसे नहीं होती वो भगवान को छोड़ देनी चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि उनको प्रसाद खिलाना चाहिए। एक्चुअली वो व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अज्ञानता के कारण ऐसा संभव है। इसलिए हिरण्यकशिपु प्रहलाद को असुर मानता था, लेकिन वास्तव में वो खुद असुर था, लेकिन वो ऐसा मानता था कि प्रहलाद असुर ही बन गया है ऐसे। तो इन दैट वे यह नहीं था सर्वभूतानां तस्यां जागरणे संयमे, जो जिसमें हम वैष्णव लोग जगते हैं वो उसके पुरुष उन लोग की वो रात्रि होती है अज्ञानी लोगों की, और जिस जिस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं उसको रिजेक्ट करते हैं, और जिसको वो एक्सेप्ट करते हैं उनका हम उसको रिजेक्ट करते हैं। तो ये तो रहेगा, हम अधिक से अधिक उनको शास्त्र की बात बता सकते हैं कि देखो शास्त्र ये कहता है। शास्त्र को थोड़ा मरोड़ा नहीं जाता, शास्त्र को एजली स्वीकार करना पड़ता है। शास्त्र को भी मैं मेरे विचार से प्रस्तुत करूँ ये ठीक नहीं है, या फिर मैं पिक एंड चूज करूँ कि मुझे ये पसंद, ये चीज बात अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली, लेकिन बाजू वाली बात बताई है वो मेरे काम में नहीं आती है, वो उसके काम में आती है, तो वो ले लेगा। तो इस तरह से शास्त्र को नहीं पढ़ा जाता कि मुझे ये श्लोक अच्छा लगा तो मैं ये ले लिया। वो है ना सर्वधर्मान प्रेरित, देखो भगवान कहते सारे धर्म का त्याग करो, भगवदगीता बंद करो, चलो भागो यहाँ से। अरे भाई आगे तो पढ़ो क्या लिखा है, आगे कहते हैं मामेकम शरणम व्रज। तो वो अर्ध कोकोटी हाफ चिकन लॉजिक, जो मुझे अच्छा लगा वो मैंने ले लिया, और जो दूसरी बात भगवान ने बताई है उसको ना वो ठीक है, वो सबके लिए, वो मेरे लिए, वो सबके लिए। तो दिस इज नॉट द वे, इसलिए शास्त्र को तोड़ा मरोड़ा नहीं आता, शास्त्र को एज इट स्वीकार करना पड़ता है, और उसके लिए प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ने पड़ते हैं, और उसके लिए अध्यात्म गुरु की शरण लेनी पड़ती है, then only we can understand that। तो ऐसे लोगों को ज्यादा समझाने से टाइम खराब होता है अपना। तो बेस्ट वे इज दैट लिव देम ऑन कृष्णस मर्सी, भगवान की कृपा पर उनको छोड़ दो, शास्त्र बताओ ठीक है, अगर मानते हैं तो, नहीं मानते छोड़ दो।
ओके प्रभु जी, इनको तो ये भी बोला जाता है कि शास्त्र में तो जाने का ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ना शास्त्र पढ़ेंगे तो उनका पोल खुल जाएगा, इसलिए वो तो स्ट्रिक्टली मना ही करते हैं कि शास्त्र को तो छूने का ही नहीं।
ऐसे लोगों को उनका जो सबसे अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है वो चेक करना चाहिए। वो आदमी में सब बुरा क्वालिटी नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा कि उसमें कोई अच्छा होगा ही नहीं, उसमें कुछ अच्छी चीज होगी ऐसे व्यक्ति में भी। तो वो जो अच्छाई उसकी होती है ना उसको थोड़ा हवा डालना चाहिए। तो क्या होता है, जैसे कुछ छोटी छोटी अग्नि का चांस होता है, उसको हवा डालने से फिर वो अग्नि प्रज्वलित होती है, और वो अग्नि सारी अज्ञानता को जला के भस्म कर देती है। तो उसकी जो भी अच्छाई होती है उसको हवा डालनी चाहिए, और इसके कारण फिर धीरे 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 वो सज्जन व्यक्ति बनेगा और फिर वो भक्त बन सकता है।
ओके प्रभु जी, थैंक यू।
और कोई प्रश्न? ओके, सो वी कैन स्टॉप। टुमारो वी विल सी यू अगेन सेम टाइम 8:30। थैंक यू।